संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिंद चले हमारे ध्यान। समय सार परमागम में 49वीं गाथा चल रही है, जिसमें अरस अरूप अगुण स्पर्श और अनिर्दिष्ट संस्थान संबंधी बोलों की चर्चा हुई। अव्यक्त बोल की चर्चा चल रही है। इसमें तीसरे अर्थ की बात चल रही थी कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, इसलिए वह भगवान आत्मा अव्यक्त है। जब ये बात कही थी और गुरुदेव श्री ने इसका अर्थ करते वक्त भूत काल की पर्यायों को निमग्न कहा था, भविष्य की पर्यायों को निमग्न कहा था, लेकिन वर्तमान पर्याय को अलग रखा था, तो उस पर से ये प्रश्न खड़ा होता है बार बार कि यदि वर्तमान पर्याय को अलग करेंगे तो भूत भविष्य की पर्यायों को जोड़ने वाला, उसमें कंटिन्यूटी रखने वाला तो वर्तमान ही है, तो आत्मा के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक भूतकाल और एक भविष्यकाल का। ये प्रश्नोत्तर चल रहे थे, इसमें बहुत सी चर्चा हो चुकी है। आप जब पेज नंबर निकालिए 17 है ना, सबसे नीचे की 16वें पेज पर 3 पंक्तियां हैं। तीन कालों में भूत और भविष्य की पर्यायें तो पारिणामिक भाव रूप से शामिल हो गईं और वर्तमान पर्याय अलग रह गई, तो फिर वह आत्मा त्रिकाली कैसे रहा? ये बात पढ़ी थी ना। अरे भाई, पारिणामिक भाव पर्याय रूप नहीं है, द्रव्य रूप है, अतः वह सदा त्रिकाली ही होता है। भूत भविष्य की पर्यायें पारणा में भाव रूप हो गई का अर्थ ही यह है कि वे द्रव्य रूप हो गई। पर्याय द्रव्य में से ही प्रकट होती हैं और द्रव्य में ही समा जाती हैं, अतः दृष्टि का विषय तो द्रव्य ही रहा, इसी कारण इस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि भी कहते हैं। माने पर्याय थोड़ी रहा, पर्याय सहित का रहा, पर्याय पर्याय के रूप में रही हो तो हम ये कह सकते हैं कि वह पर्याय को शामिल हो गई। जब पर्याय द्रव्य के रूप में शामिल हुई तो ये बात आप कैसे कह सकते हैं? एक तो मुझे कल के बारे में, जो मेरे व्याख्यान के बारे में यहां जो कमेंट किया, उसके बारे में एक बात कहनी है और दूसरी इस बारे में भी कहनी है। किसी लड़के ने कहा कि शुभ भाव के कारण वो मुनिपना कायम नहीं रहा, शुद्ध भाव के कारण रहा। ऐसा कहा था ना कि कुछ और था, शुद्धोपयोग के कारण रहा। तो शुद्धोपयोग तो नष्ट ही हो गया जब शुभ भाव में आया, छठवें मनुष्यान में आया, तो वो शुद्धोपयोग के कारण कैसे रहा? वास्तव में वो तीन कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, उसके कारण उसका मुनिपना भावलिंगपना कायम है। भाव शुद्धोपयोग माने भावलिंग नहीं है, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति इन दोनों को मिलाकर के नाम है भावलिंग, और उसके साथ रहने वाला स्वभाव और नग्न निगंबर दशा इन दोनों को मिलाकर के है द्रव्यलिंग। तो जब वो छठवें गुण स्थान में आया, जब सातवें में गया था, तब भी तीन कसाय के अभाव रूप परिणति निर्मल थी, और जब वो छठवें में आया तब भी वो तो कायम नहीं है, अकेला वर्तमान का उपयोग नष्ट हुआ है। जैसे एक आदमी के पास 10 करोड़ की पूंजी है, वो बैंक में जमा है, और वो आज जाकर के रोजाना दुकान पे नई नई कमाता है, तो आज उसने दुकान बंद रखी, तो आज की कमाई गई वो पूंजी में तो कोई फर्क नहीं आया ना, तो वो करोड़पति उस पूंजी के कारण कहलाता है, रोजाना की कमाई के कारण नहीं। क्या तो पूंजी कायम है इसलिए वो है, समझे ना, तो वो शुद्ध परिणति कायम है इसलिए वो है, शुद्धोपयोग के वजह से नहीं। शुद्धोपयोग तो छूट गया और स्वभाव की वजह से हो नहीं सकता है वो, ये बात है। दूसरी ये बात कहने के लिए कि वो पर्याय द्रव्य रूप में हो गई, वो पारणामक भाव रूप हो गई, इसलिए वो द्रव्य हो गई, तो पर्याय शामिल की बात वहां कहां रही कि भूत पर्याय की शामिल कर ली, वर्तमान को शामिल नहीं की। भूत की और भविष्य की पर्याय द्रव्य रूप हो गई इसलिए शामिल हो गई, और वर्तमान की पर्याय द्रव्य रूप नहीं हुई, पर्याय रूप खड़ी है इसलिए शामिल नहीं हुई। अंतर समझ में है ना, ये उत्तर है। इसके लिए कल एक उदाहरण दिया था, अंत अंत में किसी समझ में आया नहीं आया, वो चंद्रमोहन तो चांद खां का याद है ना, है? चंद्रमोहन जब मुसलमान बन गया तो वो चांद खां हो गया, तो चंद्रमोहन कहां रहा, तो उन्होंने हिंदू को कहां शामिल किया। वो तो कहते हैं हमने तो मुसलमान को ही शामिल किया है, वो मुसलमान बन गया तब हमने शामिल किया ना, समझे ना, ऐसा जब वो द्रव्य रूप परिणामक हो गई तब हमने शामिल किया है, इसे पर्याय को शामिल कर लिया, ये हल्ला तिलकों क्यों करते हो। अब फिर प्रश्न है कि आप कुछ भी कहो परंतु जब वर्तमान पर्याय अलग रह गई तो फिर द्रव्य त्रिकाली कैसे रहा, अखंडित कैसे रहा, यह समझ में नहीं आता। क्या तुम तर्क लगा लगा करके तो हमारा जबरदस्ती गले उतारना चाहते हो, ये बात पार पड़ेगी नहीं। अब कुछ भी कहो, मैंने कुछ भी तर्क दो। उत्तर, हम कुछ भी क्यों कहें, हम तो वही कहेंगे जो वस्तु का स्वरूप है, आगमान कूल है और तरक्की कसौटी पर खरा उतरता है। तीन बातें हो गई, वस्तु वैसी है, आगम में लिखा है और तरक्की कसौटी पर खरा उतरता है, वो बात कहेंगे। आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो कहकर के हम झूठ बोल रहे, तुम स्पष्ट हम पर आरोप लगा रहे हो, अपने मनगढ़ंत कह रहे हो, ये कह रहे हो तुम क्यों। देखो वर्तमान के दो रूप हैं, ये समझना है, बहुत मार्मिक बात है। एक व्यक्त पर्याय रूप और दूसरा त्रिकाली का वह अव्यक्त रूप जो भूत भविष्य के बीच की कड़ी है एवं भूत भविष्य को अखंड रखता है। भूत वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में अखंड रहता है और जिसे काल की अखंडता कहा जाता है, नित्यता कहा जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि है क्रिया का प्रयोग वर्तमान के अर्थ में भी होता है, पत्रकाल के अर्थ में भी होता है। जैसे आत्मा नित्य है, इस वाक्य में है क्रिया का प्रयोग त्रिकाली के अर्थ में हुआ है। अरे जरा थोड़ी सी बारीक बात है, हम क्या समझते हैं कि वो वर्तमान में का जो वर्तमान पर्याय ऊपर खड़ी है ना, तो उसमें जो त्रिकाली का अपन कहा था ना कि दुकाली कहो, नहीं वो फिर भी त्रिकाली है। वर्तमान की पर्याय अलग हो गई तब भी वो अंदर त्रिकाली ही है, दुकाली नहीं है। क्यों? क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान इन तीन की अखंडता का नाम त्रिकाली है। जो पर्याय बाहर से जान रही है तो ये समझ लो दो तरह की पर्याय होती है, एक तो जो प्रकट व्यक्त है जो वो जान रही है, एक उसकी कंटिन्यूटी कायम है वो भी वहां मौजूद है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं आया। अब इसको हम क्या कहते है तो हमारा व्याकरण से समझना पड़ेगा। इसे क्या फर्क है कि अपन समझे था माने भूतकाल और होगा माने भविष्यकाल, तो गा माने भविष्यकाल और है माने वर्तमान, ये बात सही नहीं है। भूतकाल और भविष्य काल के बारे में हम कह भी सकते हैं, लेकिन वर्तमान के बारे में सही नहीं है, क्योंकि है का प्रयोग अकेले वर्तमान के अर्थ में नहीं होता है, त्रिकाली के अर्थ में भी होता है। कुन्न कुन्नाचार्य सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, मतलब इसमें है जो शब्द है वो वर्तमान का सूचक है। आत्मा नित्य है, इसमें जो है शब्द है वो वर्तमान का सूचक है कि त्रिकाल का सूचक है? क्या जो फंडामेंटल ट्रुथ होता है उसके बारे में भी है शब्द का प्रयोग होता है। द्रव्य छह प्रकार के होते हैं, इसमें है वो वर्तमान है कि त्रिकाली, अभी होते हैं कि त्रिकाल में ऐसे होते हैं। जीव अनंतानंत हैं, अनंत हैं, तो ये अनंत हैं जो शब्द है ये वर्तमान का है, आधे ही अनंत हैं कि कल भी अनंत रहेंगे, पर कल भी अनंत थे, है ना? इसलिए जो है अभी है के दो अर्थ हैं, एक त्रिकाली और एक वर्तमान, तो त्रिकाली वाला है तो शामिल है और वर्तमान वाला है अलग रह गया। परिस्थिति ये है, हम उसको दो भेद नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भूतकाल की परिणाम तो द्रव्य रूप परिणमित हो गई और भविष्य की भी द्रव्य रूप ही हैं, अभी जब आएंगी जब पर्याय रूप होंगी वे अनागत पर्याय हैं। अब वो एक समय की अपनी समस्या के पर्याय निकल के अलग आ गई तो वहां नहीं रही, लेकिन वो द्रव्य ही रूप रही ना, वो तो भविष्य की पर्याय, लेकिन पर्याय वो द्रव्य जिस द्रव्य में शामिल हुई वो द्रव्य पहले था कि नहीं था? क्यों? और जो भविष्य की पर्याय अभी आई नहीं है उस काल में वो द्रव्य है कि नहीं है? कि वो पर्याय रूप ही है, तो वो जो भूतकाल की पर्याय नष्ट होकर उसमें समाज शामिल हो गई वो तो द्रव्य रूप शामिल भई, लेकिन जब वो द्रव्य रूप शामिल नहीं भई थी तब द्रव्य था कि नहीं था? तो द्रव्य के अस्तित्व के लिए उनका द्रव्य रूप होना कहां जरूरी है? ये तो उनकी बात हो रही है। तो जब वो भूत और भविष्य में भी था द्रव्य रूप, तो वर्तमान में भी द्रव्य रूप था। अब तीनों तरह की वर्तमान की पर्याय, जो भूत और भविष्य की द्रव्य रूप हो गई और वर्तमान की द्रव्य रूप नहीं भई, इसलिए अलग खड़ी है। इसमें त्रिकालीपना कैसे खंडित होता है? सूक्ष्म बात है, गहराई से विचार करोगे ये सब सुनने से और पढ़ने से नहीं आता समझ, पढ़ने से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सुनने से भी नहीं आएगा, जब विचार करोगे तो आएगा। श्रीमद ने लिखा है ना, कर विचार तो पाम, है ना, विचार करेगा तो प्राप्त होगा, विचार नहीं करेगा तो प्राप्त नहीं होगा, है ना? मैं पढ़ता हूं इस बात को, वर्तमान के दो रूप हैं, एक व्यक्त पर्याय रूप और दूसरा त्रिकाली का वह अव्यक्त रूप जो भूत भविष्य के बीच की कड़ी है एवं भूत और भविष्य को अखंड रखता है। भाषा देना बहुत कठिन काम था इसे, फिर मैंने भाषा देने की कोशिश की, समझे ना? भाव का ही समझ में आना बहुत कठिन है, फिर उसे भाषा में व्यक्त करना बहुत कठिन है, और फिर सबसे लड़ झगड़ के व्यक्त करना बहुत कठिन है। इसको उसी की समझ में आएगा जो समझना चाहता, लड़ना बताता उसी समझ में कभी आएगा ही नहीं। जिसे हमें गलत सिद्ध करना है ना वो उसकी समझ में नहीं आएगा, उसे छोड़ दो, करते रहने दो उसको जो भी है। देखो, भूत भविष्य के बीच की कड़ी है एवं भूत और भविष्य को अखंड रखता है। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को अखंड कालों में अखंड रहता है, इसे काल की अखंडता कहा जाता है, नित्यता कहा जाता है। यह तो आप जानते ही हैं कि है क्रिया का प्रयोग वर्तमान के अर्थ में भी होता है और त्रिकाल के अर्थ में भी होता है। जैसे आत्मा नित्य है, इस वाक्य में है क्रिया का प्रयोग त्रिकाली के अर्थ में हुआ है। एक नियम है कि जो महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, नेहरू गांधी भी समझ लो, इनके में वर्तमान काल का ही प्रयोग होता है, समझे ना? इनके भूतकाल का प्रयोग नहीं होता है। कालिदास थे नहीं, कालिदास महाकवि हैं, कालिदास थे, ये प्रयोग सही नहीं है। समझिए ना, भगवान महावीर हैं थे नहीं, वो तो मैं समझना वो भी मोक्ष में चले गए, पहले इस बाजार में थे तो कर लो तुम, ऐसी बात नहीं है। क्यों कि वो उन्होंने लिखा है व्याकरण में, जिनका यश जिंदा है वे हैं। हुकुमचंद मर जाने के बाद भी हुकुमचंद है रहेगा, था नहीं हो जाएगा। समझे, एक बात तो ये है। और दूसरा एक नियम और है व्याकरण का, आदरार्थे बहुवचनम, आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इत्तभिप्रायो समंत भद्राचार्याणाम, ऐसा अभिप्राय समंत भद्राचार्य का है। तो आचार्य का है तो तुम तो बहुवचन का प्रयोग करो, समंत भद्र के अनेक हैं कि आदरार्थे बहुवचनम, समंत भद्राचार्याणाम ऐसा प्रयोग है शास्त्रों में, समंत भद्राचार्य से नहीं आचार्य नाम, आदरार से बहुवचनम प्रयोग करते हैं। अब देखिए अपने नहीं बोलते हैं कि वह माने एक वचन और बे माने बहुवचन, क्यों? अब आ गए एक वचन है कि बहुवचन बोलो, तो बोलो पंडित जी आ गए बोले कि आ गया बोले, पंडित जी आ गया बोलो, डॉक्टर साहब आ गया बोलो, हिंदी में क्या बोलते आप? मुख्यमंत्री जी आ गए क्या? आगरा यदि कुछ मारवाड़ी औरतें हैं ना, ये ऐसे ही बोलती हैं, मां साहब आ गया क्या? एक तो मां साहब को स्त्रीलिंग से पुलिंग बना देती हैं, आ गई नहीं बोलती हैं, और एक वचन से बहुवचन नहीं बोलती हैं, क्योंकि एक ही मां साहब है ना, बहुत सी मां साहब नहीं है ना। यदि हम उन्हें समझाएं तो वे हमें समझाने लगे, अनेक थोड़ी है, बोलते ना मां साहब आ गया, एक बिल्कुल बहुत गलत प्रयोग है। मां साहब आ गई, समझे ना ऐसा बोल, मैंने एक को एक वचन में बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत हो तभी बहुवचन का प्रयोग नहीं होता, आदरार्थ से बहुवचन का प्रयोग भी होता है, पर हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में तो है ही, लेकिन हिंदी भाषा में बहुत प्रयोग है ऐसा। हम सब एक आदमी के लिए भी आ गए बे बोलते कि नहीं, कि वह उसने ऐसा कहा बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं, उन्होंने ऐसा कहा बोलो, तो उन्होंने एक वचन है कि बहुवचन है? जो गैर हिंदी भाषी हिंदी सीखते हैं ना, उनकी ऐसी हिंदी होती है। वे कर्ता ने नियम पढ़ लिया, कर्ता ने कर्म को है ना, कर्म से ऐसा पढ़ लेते कि नहीं, संप्रदान के लिए, अपादान से, मैं से और अधिकरण मैं, क्यों? तब जैसे मंगल राम गया तो राम ने गया बोलेंगे, वो राम जाता है तो राम ने जाता है बोलेंगे। मैं कहता हूं तो बोलेंगे मैंने कहता हूं, बोले तो सही है मैंने कहता हूं। लेकिन जो महाराष्ट्रियन हैं और ये गुजराती हैं, उनकी हिंदी ऐसी ही होती है, कभी कब को कभी बोलते हैं, कभी तुम कब जाओगे, अपन बोलते हैं कभी जाओगे। ये बम्बैया ये सब हिंदी वाले भी ऐसा बोलने लग गए, तो मैंने कहा तुम क्यों बिगड़ गए? कहीं साहब चलता है, चलता है तो तुम्हें कोई डंडा थोड़ी मारेगा, हम जैसे लोग समझ लेंगे कि तुम भी मुंह रखो, बस इतनी सी तो बात है ना, उनको तो माफ कर देंगे क्योंकि वो तो हिंदी भाषी हैं, इसलिए वो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं है? क्यों कभी है कि कब? कभी अलग अर्थ में होता है, कभी कभी ऐसा होता है, और कब कब ऐसा होता है ऐसा थोड़ी होता है। कब के अर्थ में कभी बोलते हैं और अब के अर्थ में अभी बोलते हैं। अब मैं ऐसा कहता हूं, अभी मैं ऐसा कहता हूं, अभी कहते हो कि अब कहते हो? सुनिए ना, तुमने अब और अभी, कब और कभी का अंतर समझ में नहीं आता है। बीमारियों लिखना नहीं जानते हैं ये मराठी भाषी हिंदी, और हिंदी गुजराती भाषी हिंदी, क्या होता है बीमारियों ली की बड़ी मात्रा ही रखेंगे, बीमारियों ऐसी रखेंगे। जब ये नियम है कि इन प्रत्यय होगा ना, ई बड़ी ई है ना तो उसकी छोटी ई हो जाएगी तब यह होगा बहुवचन बनाने के लिए। ई का ई होता है, ई नहीं होता है। बीमारियों लिखेंगे तो ई छोटी हो जाएगी और बीमारी लिखेंगे तो ई बड़ी रहेगी, तो कभी कभी वो बड़ी बीमारी में भी छोटी ई कर देते हैं। क्यों? एक वचन में दोनों को एक सी करेंगे ना, जैसे मैं तो यूं प्रत्यय लग गया इसलिए बहुवचन बन गया, यूं नहीं, वो ई को हिस्स होके यूं लगे तब बहुवचन बनता है। समझ रहे हैं ना? मैं समझता हूं यहां जो गुजराती हो मराठी बैठे हो, गुजराती तो नहीं दिखते कम है लेकिन मराठी तो है, तो अपनी हिंदी को सुधारने की कोशिश करेंगे क्या? तो एक बात क्या तो हो गया ना, यह बात सातवीं गाथा के अनुशीलन में विस्तार से समझाई गई हो, काल की अखंडता। आप उसका एक बार गहराई से अध्ययन करें तो सब समझ में आ जाएगा काल की अखंडता किसे कहते हैं, ये उसमें अपन ने गहराई से बताई है। और गहराई से समझना हो तो दृष्टि के विषय नाम की जो अपनी किताब है उसमें बताई गई है, उसको मुझे एक दफे द्वारा लिखना है मैंने संशोधन करके, लेकिन समय नहीं मिलता है तो वैसे ही चल रही है इसे छपने ही द्वारा। अरे भाई आप एक और भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में पारिणामिक भाव रूप से अंतर्मग्न मान रहे हैं और दूसरी ओर उन्हें काल से खंडित भी कर रहे हैं। जब ये पारिणामिक भाव से मान रहे हैं तो फिर आप तीन काल की बात कैसे कर रहे थे, भूत भविष्य वर्तमान? परिणाम पारिणामिक भाव में तो ऐसे भेद होता ही नहीं है। जब भूतकाल की पर्याय पारिणामिक भाव रूप से परिणमित हो गई, द्रव्य रूप से हो गई, तो उसमें भूतकाल भविष्यकाल का भेद कैसे कर रहे आप? तो वहां शामिल भी कर ली और फिर यहां भूत भविष्य का भेद भी की खड़े किए जा रहे हैं उनको, है ना? आप यहां क्यों भूल जाते हैं कि पारिणामिक भाव द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी ओर से अखंडित ही होता है और यहां भी वह अखंडित ही है। यही कारण है कि यहां चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव को अव्यक्त कहा गया है। तीसरे बोल में ये बहुत चर्चा चलती थी सोनग्राम में, जब गुरुदेव श्री मौजूद थे तब भी, वहां एक नवल भाई करके थे और वो बहुत ज्यादा ऐसे माने जाते थे कि वे बहुत निश्चयने वाले हैं, मतलब निश्चयभाषी नहीं निश्चयने वाले, ऐसा लोग उन्हें मानते थे। तो मैंने पर्याय किसी भी रूप में, क्यों एक मेरे गवाह बैठे हैं वहां पीछे पुरुषोत्तम बाबू मेरे सहपाठी रहे जी, मेरे सीनियर थे, मेरे एक दो क्लास आगे थे, मनोरमा विद्यालय में हम पढ़ते थे जब, तो बहुत चलती थी वो, ए, 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 उनके ग्राहक हैं, उनके पास जाके बैठते थे। क्यों जाते थे कि नहीं? हाँ। नवल भाई थे, तो एक दफे मैं प्रवचन कर रहा था, कहूं कि अकेले मुझको ही प्रवचन करने का अधिकार मिला था सोनग्रह में, और किसी पंडित का आज तक सोनग्रह में प्रवचन नहीं हुआ मेरे अलावा, गुरुदेव के तो होते ही थे लेकिन किसी पंडित को परमिशन नहीं मिली, क्लास ले लो प्रवचन नहीं कर सकते, शाम को मेरा होता था। तो जब ये प्रवचन चल रहा था तो उन्होंने दूर से कहा मेरे से, पीछे बैठे थे, वर्तमान पर्याय में शामिल है कि नहीं, ऐसा प्रश्न किया, क्योंकि वो बहुत चलती थी उस वक्त चर्चा और उनको ऐसा भ्रम होता था मेरे कथन में बार बार कि ये उसमें से उस पर्याय वर्तमान पर्याय को शामिल कर रहे हैं, वर्तमान पर्याय को द्रव्य में शामिल कर रहे हैं, इसका सामना मैं गुरुदेव के सामने से कर रहा हूं क्या क्या प्रश्न किया था वो, क्या नाम, हमारा नाम भूल गया मैं, दुलीचंद जी, क्या प्रश्न था कि तुम वर्तमान पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है, तो मैंने क्या उत्तर दिया था? कोई श्रोता होगा बैठा होगा यहां तो वो बता सकता है कि ऐसी शामिल नहीं है, ऐसी शामिल है, समझे क्या है? बोलो, नहीं आया समझ में? अभी बताता हूं कि भाई एक लड़का लड़की की शादी हुई, शादी होती है एक और दिखती है दो, है ना, दोनों को मिला के एक ही होती है ना, वो दिखती हैं दो। अब मान लो कि हमको लड़की वाले का निमंत्रण नहीं आया और लड़के वाले का आया और हम गए। अब हमसे किसी ने प्रश्न किया कि आप फलां सेठ की लड़की की शादी में शामिल हुए थे कि नहीं, बोलो क्या जवाब दें? क्या उनका तो हमें कार्ड ही नहीं आया, शामिल होने का सवाल क्या खड़ा होता है? क्यों नहीं, हम नहीं हुए शामिल, लेकिन हमने जो उनकी फिल्म बनी थी उस फिल्म में आपको देखा है, देखा होगा। हम तो फला के लड़के की शादी में शामिल हुए थे क्यों समझ में आया ना, और लड़का लड़की स्टेज पे बैठे थे और उन्हें आशीर्वाद देने बुलाया तो वहां गए थे, तो फोटो तो हो गई क्यों? लेकिन हमारा ये कथन कि उनकी लड़की, हम ये भी कह सकते थे यहां शामिल हुए थे, तो दोनों ही अर्थ सही हो सकते थे ना। तो मैंने कहा वर्तमान पर्याय वो पर्याय रूप में त्रिकाली ध्रुव में शामिल नहीं है, समझ में आया ना आपके में? एक उत्तर तो ये, दूसरा ये कि यदि वो उसको विषय नहीं बनाए, उससे एक मेक नहीं हो, तो त्रिकाली ध्रुव का अनुभव कैसे होगा मुझे बताओ, दूर खड़ी रहे और वो त्रिकाली ध्रुव अनुभव में आ जाएगा, सारे जगत को गेय बनाती रहे तो त्रिकाली ध्रुव अनुभव में आ जाएगा, तो उसे ऐसे शामिल होना पड़ेगा ना, उससे तन्मय होना पड़ेगा ना, उससे एकाकार होना पड़ेगा ना। क्यों विवेल जी की भाषा में कह दो कि पर्याय ये कहती मैं शुद्ध हूं, पर्याय शुद्ध है, मैं त्रिकाली हूं। अरे पर्याय दिव्य की तरफ से बोलती है, उसका अपने में से अपनापन टूट गया है और दिव्य में अपनापन स्थापित हो गया है, इसलिए वो उसकी तरफ से बोलती है। कोई पादमी की लड़की ने काशीवाल के लड़के से शादी की, अब हम उस लड़की से पूछें तुम कौन हो, बोलो क्या बताए पादमी का काशीवाल, आपके हिसाब से क्या बताना चाहिए? बोलो शांतिलाल जी क्या बताना चाहिए? काशीवाल लड़के से शादी हो गई, पादमी की लड़की है, तो काशीवाल ही बोलेगी ना, भले ही पादमी जी की लड़की हो, क्योंकि जिसमें शामिल हो गई क्यों वो उसके साथ ऐसी एकाकार हो गई कि वो ये भूल ही गई कि मैं पादमी हूं, हम तो काशीवाल हैं, हम तो काशीवाल हैं। तो तुम्हारे देवर की शादी करना है ना, उसके बारे में नहीं, अभी हमें नहीं, हमारा कोई विचार नहीं है अभी, ये तेरे से पूछता कौन है? आज तो वो देवर अपने माँ बाप से भी नहीं पूछता तू कौन होती है, वो भाई से भी नहीं पूछेगा, भाभी से कौन पूछता है, लेकिन उसने उस परिवार के साथ ऐसा एकाकार अपना स्थापित कर लिया है कि वो ऐसी कहती नहीं कि हमारी मम्मी का बेटा नहीं है, कि पापा का बेटा नहीं है, कि उनका बेटा नहीं है, कि पति का बेटा नहीं है। घर में तो चर्चा चलती है ना कभी दो साल शादी नहीं करनी, तो वो इसी भाषा में बोलती है कि हमें अभी दो साल शादी नहीं करनी है, क्यों बोलती कि नहीं बोलती, क्योंकि वो इतनी एकाकार हो गई है, वो जो वर्तमान पर्याय जिसको तुम दूर अछूत बना के खड़ी रखना चाहते हो, वो त्रिकाली ध्रुव में को विषय बनाने रूप में शामिल होए कि नहीं, विषयी रूप में शामिल होए कि नहीं, क्यों? कभी कभी ऐसी बातें करते हैं हम, पहले छोटे लड़कों की शादी हो जाती थी ना, पांच वर्ष में, सात वर्ष में, दस वर्ष में, तो एक लड़के की दस वर्ष की उम्र में शादी हो रही थी, उसका दूसरा दोस्त था, तो उसने कहा क्यों भैया तुम अपनी बारात में मुझे ले चलेगा कि नहीं? तो बड़ा भोलेपन से बोला कि पापा यदि मुझे ले जाएंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा कैसा है पागल, तेरे जाए बिना शादी कैसे होगी, तू तो जाएगा ही, इन पापाओं का कोई भरोसा नहीं है, कहते तो वे ऐसे ही हैं, लेकिन 25 दफा धोखा दे चुके हैं। जब भी बाहर होता है और मैं कहता हूं कि आपकी बार आप बंबई जाएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, हां चलना, हां चलना, हां चलना, 25 दफे कहते हैं
और जिस दिन जाने लगते हैं तो 5 का नोट पकड़ा के और चल देते हैं। है ना, बहुत पापा लोग बहुत धोखेबाज होते हैं। मुझे पक्का भरोसा नहीं है कि मेरी शादी में मुझे ले जाएंगे। ऐसे लड़कों की भी शादी कर देते थे लोग, ऐसे ही कहते शामिल होगी या नहीं होगी, शामिल दूर रखो दूर रखो दूर रखो। अरे इतना अछूत बनाओगे तो अनुभव कैसे होगा ना? वो पर्याय ध्येय के रूप में शामिल नहीं हो, दृष्टि के विषय के रूप में शामिल नहीं हो, ज्ञेय के रूप में शामिल नहीं हो, लेकिन ज्ञाता के रूप में तो शामिल होगी कि नहीं होगी, उसे स्पर्श करेगी कि नहीं, एकाकार होगी कि नहीं, तदाकार होगी कि नहीं। अरे स्पर्श करेगी, हाँ स्पर्श, स्पर्श नहीं, स्पर्श पागल हो गए हो, उसका तो दिव्य क्षेत्र काल भाव में अकेला क्षेत्र भेद कहाँ है, अकेला भाव भेद है। स्पर्श तो वह किए ही हुए हैं, समझना है ना, जबरदस्ती लगा उसमें अकेला भाव भेद है। द्रव्य तो उसका भी वो ही है ना जिसकी वो पर्याय है। तो दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, ध्यान के ध्येय में पर्याय शामिल नहीं है, उसका क्या अर्थ है वास्तविक समझते नहीं हम। और बस कोई भी एक आग्रह लेकर के और गहरा अध्ययन मनन चिंतन स्वाध्याय शास्त्र का ज्ञान किए बिना और कुछ भी छोड़ देते हैं और पक्ष खड़े कर लेते हैं, और 10-20 मूर्ख तो हरेक को मिल जाते हैं क्या, और उनमें से 2-4 करोड़पति हुए तो फिर बस मत भी चल निकलता है क्या। क्या चल रहा है अपना, देखो पेज नंबर 4th अर्थ है। चौथे अर्थ में यह कहा गया है कि भगवान आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, अतः अव्यक्त है। इसका भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, देखो वो भगवान आत्मा व्यक्त नहीं है ऐसा नहीं है, वो तो व्यक्त ही है। कहां लिखा व्यक्त है, एक गाथा है समय सार की, तो उसमें लिखा ना एक तो जलहल ज्योति जगमगा जगमगा हो रही है ना, अत्यंत प्रकाशमान ज्योति है, लिखा कि नहीं लिखा। तो फिर क्यों नहीं दिखता ज्ञानियों को, तो कितना बढ़िया उपाय है, उल्लुओं को सूरज नहीं दिखता है तो सूरज का क्या दोष है। प्रकट अति सूक्ष्म कहाँ है, कौन सी गाथा में है ये भगवान आत्मा कैसा है, प्रगट अति सूक्ष्म शब्द है कि प्रगट भी है और अति सूक्ष्म भी है। तो भगवान आत्मा तो प्रगट ही है, समझ आए ना, लेकिन वो क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। जैसी पर्याय व्यक्त है वो क्षणिक व्यक्ति है, और वो त्रिकाल व्यक्त है। तो क्षणिक व्यक्ति नहीं है, त्रिकाल व्यक्त है, उसको अव्यक्त कर दिया, गजब हो गया। क्या समझ रहे ना आपके, कि वो तो हमेशा ही व्यक्त है। जैसे अभी बोलते हैं ना, जब गुरुदेव के प्रवचन सुने होंगे कई दफे वो बोलते हैं कि भई गुरुदेव आपने गजब की बात कही, बहुत नई बात बताई, नई बात बताई, हम तो सैकड़ों बार कह चुके हैं, 19 बार तो सभा में प्रवचन में कह चुके हैं, और तूने आज सुनी तो नई हो गई, तेरे लिए नई होगी। क्यों, भगवान आत्मा अज्ञानी के लिए नया होगा, ज्ञानी भगवंतों के लिए तो अनादिकाल से व्यक्त ही है अनंत, नहीं तो बताए कैसे है कि अनंत आत्मा है, वो छिपा हुआ होता तो भगवान ने कहा कैसे है कि अनंत है जीव। तो क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, बस खत्म। इसके निषेध के लिए उसको हमने अव्यक्त कह दिया, छल नहीं ना। तीसरे बोल गुरुदेव का वचन है, तीसरे बोल में सर्व व्यक्तियों की सामान्य बात कही थी। क्या कहा था, सर्व व्यक्तियों की सामान्य सामान्य बात कही थी, परंतु चौथे बोल में क्षणिक व्यक्ति अर्थात एक समय की मात्र वर्तमान पर्याय की बात कही की गई है। उसमें तो सामान्य में व्याप्त समस्त व्यक्तियां ध्रुव सामान्य में अंतरहित हैं, तो वो सामान्य बात कही थी, और यहां एक विशेष बात है, एक विशेष एक पर्याय को पकड़ा है।
आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, अतः अव्यक्त है। एक समय की पर्याय व्यक्त है, वह क्षणिक है। जब आत्मा शुद्ध चैतन्य सामान्य त्रिकाल है तो क्षणिक व्यक्ति मात्र प्रकट पर्याय के बराबर कैसे हो सकता है? वो तो बहुत छोटी चीज है, वो तो बहुत बड़ा है। इस बोल का तात्पर्य यह है कि पर्याय एक समय मात्र का सत होने से दृष्टि करने योग्य अर्थात आश्रय करने योग्य नहीं है। एक समय का सत है तो आश्रय करने योग्य क्यों नहीं है? अतः अनंत काल में जिसका आश्रय नहीं किया है ऐसे एक शुद्ध त्रिकाली अव्यक्त आत्म स्वभाव का आश्रय करना योग्य है। क्यों? एक और अत 99 वर्ष के बुढ़े के गले में बरमाला डाल दे और साल दो साल में विधवा हो जाए और रोने लग जाए तो लोग यही कहें क्यों रोती है? कहे मेरा पति मर गया मैं विधवा होगी रोऊं नहीं? कि पागल तूने तो वैधव्य के गले में ही बरमाला डाली थी उसके अरबों रुपया देखकर। जितने जल्दी मरता उतने जल्दी तुम्हारा पति हो जाती। क्यों तू रोती क्यों? खुशी मना। ऐसे ही जिसने पर्याय में एकत्व किया उसने उसके भाग्य में तो रोना ही लिखा है। क्यों? क्योंकि एक समय बाद वो नष्ट हो जाएगी। कोई त्रिकाली एक समय की चीज में अपनापन करे तो रोने के अलावा और क्या होगा? लोग में कहावत परदेशी की क्या प्रीत है, परदेशी से प्रीति करेगा तो वो तो आया है तो दिन को चला जाएगा, फिर एक बार रोने के अलावा तेरे हाथ में क्या रहेगा? तो क्या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में कभी भी अपनत्व नहीं करता है, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, ये चौथे बोल में कहा है।